अंधत मस में ज्योतिर्मय उतरो। मेरे मन के अंधत मस में ज्योतिर्मय उतरो। मलयाचल का अभिनव चंदन, कहाँ यहाँ देवों का नंदन। मलयाचल का अभिनव चंदन मेरे उम्र के उजड़े वन करुणा में बिछरो। मेरे मन के अंध तमस में ज्योतिर्मय उतरो। मेरे मन के अंध तमस में ज्योतिर्मय उतरो। नहीं कहीं कुछ मुझ में सुंदर, काजल सा काला ये अंतर। नहीं कहीं कुछ मुझ में सुंदर, काजल सा काला ये अंतर। प्राणों के गहरे गहवर में ममता मई विहरो।
मेरे मन के अंत तमस में ज्योतिर्मय उतरो। मेरे मन के अंत तमस में ज्योतिर्मय उतरो।
शांति। मेरे मन के अंध तमस में ज्योतिर्मयी उतरो। मेरे मन के अंध तमस में ज्योतिर्मयी उतरो। कहां यहां देवों का नंदन, मलयाचल का अभिनव चंदन। मेरे उर के उजड़े वन में करुणामयी विचरो। मेरे मन के अंध तमस में ज्योतिर्मयी उतरो। जय जय माँ, जय जय माँ। नहीं कोई कुछ मुझ में सुंदर, काजल सा काला ये अंतर। नहीं कहीं कुछ मुझ में सुंदर, काजल सा काला ये अंतर। प्राणों के गहरे गहवर में ममता मई विहरो। मेरे मन के अंध तमस में ज्योतिर्मयी उतरो। भक्त माँ से प्रार्थना कर रहा है कि मेरे अंदर कुछ भी सुंदर नहीं है। अंतर कैसा है? काजल सा काला। कहां वो देवों का नंदन, ना मन में देवों का नंदन है, ना ही मलय पर्वत में जो प्राप्त चंदन है वो है। मेरे उर के उजड़े वन में करुणामयी विहरो, हे करुणामयी, हे ज्योतिर्मयी, हे ममतामयी, आओ। भक्त पुकार रहा है, किसको किसको पुकार रहा है? माँ को पुकार रहा है। और हम सब कौन सी माताएं हैं? कौन सी माताएं हैं? शीतला माता। शीतला माँ बनकर क्या करना है तुमको? कौन से चीटे? ज्ञान के चीटे, ठंडे चीटे किस पर डालने हैं? किस पर डालने हैं? शीतल के अपोजिट में क्या है? तपत, जो तप रही है, जो जल रही है, कामाग्नि क्रोधाग्नि में, ऐसी जो आत्माएं जल रही है विकारों में, ऐसी आत्माओं पर तुमको छीते डालने, स्वयं शीतल बन दूसरों को शीतल करना है। सारी दुनिया में आग ही आग है। कितने प्रकार की आग है? कितने प्रकार की आग है? शीतलता की शक्ति, अव्यक्त मुरली, संडे, अक्टूबर मास 2019। अभी अभी एक मुरली चली थी ना, 2 मास पहले। कौन सी थी? शीतलता की शक्ति, याद आई? ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा, रूहानी तारामंडल। ये तारामंडल न्यारा है, ये तारामंडल प्यारा है। और तुम ज्ञान सूर्य से क्या लेते हो? सत्यता की शक्ति। और ज्ञान चंद्रमा से क्या लेते हो? शीतलता की शक्ति। और ये शीतलता की शक्ति क्या करती है? इस पर मुरली थी। और संसार में 4 प्रकार की आग है, और 4 प्रकार की आग से कैसे बचना, उसकी विधि भी उस मुरली में थी। और शीतलता की शक्ति क्या करती है, उसके बारे में भी वर्णन था। तो कौन सी 4 प्रकार की आग है जिसमें संसार जल रहा है? और बाबा ने कहा ये चारों आग और तेज होगी, कम होने वाली नहीं है। कौन सी आग थी? पहली विकारों की आग, दूसरी कितना मास हो गया? 2 मास हो गया। अक्टूबर में चली थी। कौन सी आग थी? 4, पश्चाताप की आग, 4थी। दूसरी विकारों की आग, दूसरी। पहली विकार, दूसरा विनाश, देह के पदार्थ, संबंध के लगाव की आग, और 4थी पश्चाताप की आग। 4 प्रकार की आग का वर्णन किया था। और एक एक आग से कैसे छूटे उसकी विधि भी सुनाई थी। पहली आग है विनाश की आग, छूटने की विधि निर्भयता की शक्ति धारण करो। उसके दूसरे दिन यहीं पर क्लास कराई थी। कौन सी? नथिंग न्यू के घुंघरू। वो कहेंगे वो गया, और तुम कहोगे, और तुम कहोगे, और तुम कहोगे अपने मीठे घर गया, अपने मीठे राज्य में गया। नथिंग न्यू के घुंघरू पहनो। निर्भयता की शक्ति, इसके लिए तुम्हारे अंदर कोई भी आग ना हो। अगर जरा भी आग हो तो आग आग को पकड़ेगी। अव्यक्त महावाक्य है बाबा की। तो सबसे पहली आग कौन सी? विनाश की, जिसको तुमको जीतना है निर्भयता की शक्ति से। दूसरी आग थी पश्चाताप की, चलो देह के लगाव या देह के संबंधों की आग। कैसे जीतेंगे सर्व? कैसे जीतेंगे सर्व? संबंध एक से। बाप ही संसार है, बाकी सब समाप्त। तीसरी आग विकारों की आग को कैसे जीतेंगे? विकारों की आग अपने आदि और अनादि स्वरूप में स्थित होकर। मुरली याद आ रही है ना? धुंधली धुंधली थोड़ी थोड़ी, ऐसा लग रहा है कुछ कुछ सुना था कभी, कुछ कुछ स्वप्न जैसा, मुरली की डेट थोड़ा थोड़ा लग रहा है। हाँ 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 थी कभी तो ये मुरली चली थी 13 अक्टूबर, 13 अक्टूबर को, और मुरली की ओरिजिनल डेट 21 फरवरी 85। विकारों की आग को कैसे जीतेंगे, अपना अनादि स्वरूप और आदि स्वरूप में स्थित होकर। पश्चाताप की आग को कैसे जीतेंगे, कैसे बचेंगे, प्राप्तियों को सम्मुख रखकर। तो 4 प्रकार की आग बताई थी और 4 विधियां बताई थी उस मुरली में। शीतलता की शक्ति, यह शीतलता की शक्ति क्या करती है, यह शीतलता की शक्ति आत्मिक स्नेह की शक्ति है। यह शीतलता की शक्ति से कोई भी आ जाए उसको तुम बदल सकते हो। इस शीतलता की शक्ति से कितना भी क्रोधी व्यक्ति सामने आ जाए उसे शांत कर सकते हो। कितना भी मैं करने वाला आ जाए उस मैं करने वाले को तुम बाबा बाबा कहने वाला बना सकते हो। यह शीतलता की शक्ति से तुम संकल्पों की स्पीड को कम कर सकते हो, क्योंकि संकल्पों की स्पीड अगर ज्यादा रहेगी तो एक्सीडेंट होगा। इसके लिए बोल में, संकल्प में, संबंध संपर्क में शीतलता की शक्ति से शीतल बनो तो व्यर्थ नहीं चलेगा। इस शीतलता की शक्ति एक छत्र छाया है, जैसे कोई प्यासा, जैसे कोई धूप में भटक गया और पेड़ की छाव उसे मिल गई है, वो आएंगे कि इसके पास जाने से थोड़ी शीतलता का अनुभव होता है। ये सारी पॉइंट्स थी मुरली। शीतल ताकि शक्ति, आज बाबा ने क्या कहा, तुम सब कौन हो, शीतला देविया हो, शीतल योगी हो, शीतला माँ हो। क्या गायन है भक्ति में, शीतलता शीतल शीतला माँ का, कौन सी चीज की देवी है ये, क्या करती है ये देवी, क्या करती क्या है ये देवी, शीतलता की देवी। देवी जब निकलती है ना, स्मॉल पॉक्स, चेचक, चेचक में क्या किया जाता है, मां के मंदिर का पानी लाया जाता है। अभी तो चेचक नहीं है, इरेडिकेशन हो गया है। 1977 लास्ट केस थी वर्ल्ड में, 77 के बाद में कोई केस अभी तक मिला नहीं, इसलिए ये देवी भी थोड़ी सी थोड़ा सा इसकी पॉपुलैरिटी कम हो गई क्योंकि उसकी जो स्पेशलिटी थी उसके ग्राहक थोड़े कम हो गए तो वो गधे पर सवार दिखाती है, उसके एक हाथ में झाड़ू है, दूसरे हाथ में नीम के पत्ते है, तीसरे हाथ में क्या है, शास्त्र है, ज्ञान है, और चौथे हाथ में क्या है, कलश है जिसमें पानी भरा है शीतल। ऐसी ये शीतला माँ दिखाते हैं भक्ति मार्ग में। शीतला माँ के बहुत सारे मंदिर हैं, शीतला माँ की आरती, शीतला माँ का चालीसा, शीतला माँ की स्तुति, स्तोत्र, सब कुछ है। पर अभी जैसे कहा, पॉपुलैरिटी थोड़ी दूसरी देवियों ने ओवरटेक कर लिया है। हाँ, रात को बना के रखते और सुबह भोग लगाते। तो हमें क्या बनना है, शीतल, शीतल अर्थात शांत, शीतल अर्थात नम्र, शीतल अर्थात शीतल अर्थात डिस्टर्ब नहीं, शीतल अर्थात पवित्र। आज बाबा ने क्या कहा, सारा संसार किस चिता पर बैठा है, काम चिता पर बैठा हुआ है, तुम्हें उन सबको ज्ञान चिता पर बैठाना है। जब तक स्वयं शीतल नहीं, दूसरों को शीतल नहीं बनाया जा सकता। बिना शीतल शीतला देवी बने तुम देवता नहीं बन सकते, आज की मुरली में महावाक्य है। तो हमें क्या बनना है, शीतला देवी, हमें क्या बनना है, शीतल योगी बनना है। इस संसार में सभी जल रहे हैं, जैसे कहा ना चार प्रकार की आग, इन चारों आग में संसार जल रहा है, हर एक में कोई ना कोई आग जरूर लगी हुई है। काम, कामाग्नि है कहीं, क्रोधाग्नि है कहीं, ईर्ष्या की अग्नि है कहीं, द्वेष की अग्नि है, हर मन जल रहा है। इसके लिए भक्त कहता है मेरे मन के अंध तमस में ज्योतिर्मयी उतरो, हे करुणामयी, हे ममतामयी, प्राणों के गहरे गहवर में, गहवर अर्थात वो गहरा स्थान जहां पर प्रकाश भी ना जाए, प्राणों के गहरे गहवर में ममतामयी विहरो। नहीं कहीं कुछ मुझ में सुंदर, काजल सा काला ये अंतर, कुछ भी नहीं है इसमें, काला काला हो गया है। इसलिए हे ज्योतिर्मयी आओ। भक्त गा रहे, पुकार रहे माता को, वो माता हम है, वो देविया हम है, हमारे अंदर इतनी पावर हो कि हम उनके मंद मन के अंधकार को मिटा सके। उसके लिए हमें स्वयं ज्योतिर्मयी बनना होगा, करुणामयी बनना पड़ेगा, ममतामयी बनना पड़ेगा, मां बनना पड़ेगा, मां बनकर इस संसार की पालना करनी है, मातृत्व को धारण करना है। दो शब्द, एक है मां, एक है मातृत्व। मां बनना तो बहुत आसान है, शरीर से शरीरों को जन्म देना कोई भी कर सकता है, परंतु मातृत्व बहुत ऊंची अवस्था है। मदरहुड और मदर, मदर तो बहुत है संसार में, पर मदरहुड कहां है? मम्मा मदरहुड की लेवल पर थी, मातृत्व, मातृत्व अर्थात पालना के संस्कार, प्रेम के संस्कार। तो तुम मां हो, शीतला देवी हो, संसार को शीतल करना है, यह हमारा कर्तव्य। और शीतल अर्थात क्या क्या अर्थ है शीतल के? एक शांत, दूसरा पवित्र। शीतल अर्थात शांत, शीतल अर्थात पवित्र, शीतल अर्थात ठंडा, शीतल अर्थात ठंडा। विनम्र का अर्थ तो ह्यूमिलिटी होता है, शीतलता अलग चीज है। शीतलता अर्थात कूलनेस, शीतलता अर्थात स्पिरिचुअल कामनेस, शीतलता अर्थात शांति, स्थिर भी कह सकते हैं, परंतु शांति, पवित्रता, ठंडा, शीतलता अर्थात आवेश रहित, शीतलता अर्थात जहां पर उग्रता नहीं है, तीव्रता नहीं है, एजिटेशन नहीं है, एक्साइटमेंट नहीं है, शांत है, शांत हुई आत्मा, हलचल नहीं है, वो है शीतलता। एक मक्खी भिन भिनाती हुई एक हाथी के कान के पास जाती है, हाथी उसे अपने कानों से दूर करता है, फिर से आती है, फिर हाथी दूर करता है, फिर से आती है, फिर हाथी दूर करता है। हाथी पूछता है, आखिर तुम इतनी बेचैन क्यों? तुम एक जगह नहीं बैठ सकती शांत? वो कहती, क्या करूं, जो चीजें मुझे दिखती है वो मुझे आकर्षित करती है, जो मैं देखती हूं, जो मैं सूंघती हूं, जो मैं स्पर्श करती हूं, जो मैं सुनती हूं, वो हर चीज मुझे खींचती है, इसलिए मैं बेचैन रहती हूं। हाथी को मक्खी पूछती है, आप इतने शांत कैसे रहते हो? वो कहता है, मेरी इंद्रिय मेरे वश में है, मेरी आंखें मेरे वश में, मेरे कान मेरे वश में, मेरे हाथ मेरे वश में, मेरे पैर मेरे वश में, सारी इंद्रियां मेरे वश में, और कोई भी चीज मैं अपने आप को आकर्षित करने नहीं देता उनसे, अपने आप को, इसलिए मैं शांत हूं। तो आत्मा शांत इसलिए है क्योंकि संसार की हर वस्तु उसे खींच रही है अपनी ओर, इसलिए बेचैन है, इसलिए अशांति है, इनर पीस नहीं है कहीं पर भी। तो बाबा ने कहा है, संसार जल रहा है, तप रहा है, तुम्हें इसे शांत करना है, छींटे दो बस, थोड़े से भी छींटे मिल जाएंगे ना ठीक लगेगा उनको, पर उसके लिए ये काम वो कर सकते हैं जो स्वयं अंदर से बहुत ज्यादा शांत हो गए, कोई कंप्लेंट नहीं है किसी भी बात की, किसी से कोई शिकायत नहीं है, ना आप कोई प्रश्न है, ना द्वंद्व है, ना संघर्ष है, ऐसी अवस्था। एक स्कूल में एक टीचर सभी विद्यार्थियों से कहता है कि जाओ एक एक प्राणी पशु पक्षी या किसी पर भी कुछ तो लिख के लाओ। तो दूसरे दिन सभी लिख के लाते, कोई गाय, कोई बैल, कोई हाथी, कोई घोड़ा, अलग 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 पर कुछ कुछ लिख के आते लाते। एक बच्ची से पूछते हैं तुमने क्या लिखा, वो कहती है मैंने मक्खी के ऊपर लिखा। सब हंसते हैं क्या लिखा होगा मक्खी के ऊपर, वो कहती है कि मैंने मक्खियों को कल बहुत सूक्ष्मता से निरीक्षण किया, देखा मेरे घर में खिड़की है, वहां मक्खियां जो है वो बहुत भिनभिना रही थी और टकरा रही थी, मुझे लगा क्या है, तो मैंने दूरबीन ली और दूरबीन से देखा तो मुझे पता चला शायद उनका झगड़ा चल रहा है। और मैं सोच रही थी ऊपर तो खुला है, ऊपर से जा सकती है, फिर भी नहीं जा रही है, वो टकरा रही है उससे, दरवाजा खिड़की के इससे, जबकि ऊपर से जा सकती है। एक तितली भी आई जो ऊपर से चली गई, तितली ने उनको शायद उसको उनको शायद बोला भी आओ मेरे साथ, परंतु वो अपने आप में झगड़ने में इतनी व्यस्त थी कि ध्यान तक नहीं दिया तितली ने क्या कहा। तो उस बच्ची ने कहा मुझे लगता है वो झगड़ रहे थे, पर टीचर ने करेक्शन दी, नहीं ऐसा नहीं है, वो उनका क्रोध नहीं था, हो सकता है उनका लेवल ऑफ इंटेलिजेंस ही उतना है, वो झगड़ा नहीं कर रही थी। टीचर ने अपना एक्सप्लेनेशन दिया और टीचर कहता है कि अभी एक काम करो, घर जाकर लेवल ऑफ इंटेलिजेंस, बुद्धिमत्ता का स्तर, इसके हिसाब से हाईएस्ट इंटेलिजेंस लेवल पे कौन है और लोएस्ट इंटेलिजेंस लेवल पर कौन है, उसकी लिस्ट बना के लाओ आप। और दूसरे दिन स्कूल में झगड़ा हो जाता है, सारे पेरेंट्स वहां आ जाते हैं क्योंकि सभी बच्चों ने अपने मां बाप का लेवल नाम लिख के लाए कि ये जो लोग हैं ये लोएस्ट लेवल ऑफ इंटेलिजेंस वाले, क्योंकि ये हमेशा क्या करते रहते, झगड़ते रहते, कंप्लेन करते रहते। सारे पेरेंट्स दूसरे दिन स्कूल में, क्योंकि बच्चों ने ये देखा कि इनका बुद्धि का स्तर बहुत ही लो है, इसलिए ये झगड़ा कर रहे हैं। संसार में सभी झगड़ रहे, संसार में सभी जगह अशांति है, संसार में इतनी अशांति है, पर कोई ये मानने को स्वीकार नहीं कि हमारा लेवल ऑफ इंटेलिजेंस बहुत लो है। स्पिरिचुअल लेवल ऑफ इंटेलिजेंस, आध्यात्मिक स्तर, क्योंकि हर आत्मा अशांत है और हमें शीतला देवी बनकर उन्हें शांत करना है। उसके लिए हमें स्वयं बहुत 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 शीतल बनना पड़ेगा। क्या विधि है शीतल बनने की? दो प्रश्न है, किस विधि से शीतल बने और किन किन बातों में शीतल बने। पहला प्रश्न है कैसे बने? उत्तर, पहला उत्तर योग। योग, योग जितना जितना गहरा होता जाएगा उतनी आत्मा अंदर से शीतल बनती जाएगी। ना काम रहे ना कामना, योग से आत्मा जुड़ी रहे शीतलता के सागर से, वो शीतलता का झरना है। जैसे जितनी उससे ज्यादा जुड़ी रहेगी उसकी शीतलता की किरणें हम में आएगी और आत्मा स्वतः ही शीतल, शांत, स्थिर, एकाग्र, पवित्र बनती जाएगी। आज कहा ना बैटरी, बैटरी डिस्चार्ज भरना है उसको। राजयोग अर्थात जहां आत्मा एकांत में बैठती है और परमात्मा से सूक्ष्म शक्ति अंदर धारण करती है और वो शक्तियां ही उसे शीतल बनाएगी, बाकी कुछ उसे शीतल नहीं बना सकता। यह आंतरिक साधना है। तो सबसे पहला तो है योग से, इसके लिए अपने योग के चार्ट को रोज रोज बढ़ाते जाना है। बाबा से कल मैं जितना समीप था उससे आज ज्यादा समीप रहो। कल कहा था प्रण करो अपने आप से, क्या याद में खाएंगे? आज खाया क्या? शेयर कर करके खाया बाबा से, बनाना भी याद में और खाना भी याद में, बहुत बड़ा पुरुषार्थ है। खाना भी याद में, और वो भी केवल शुरुआत में भोग लगा दी और फिर भूल गए, ये भी नहीं, बीच बीच में बातें करते हुए, बाबा से बातें करते हुए, किसी भाई ने बड़ा अच्छा लिखा है, भोजन करते हुए बाबा से क्या क्या बात किया जाए। बाबा इसमें थोड़ा नमक कम लग रहा है, आपको क्या लगता है, ठीक लग रहा है? बाबा एक काम करो, चलो मैं किचन में बना रहा हूं, जैसे बाबा एक छोटा है व्यक्ति, एक छोटा भाई है या असिस्टेंट है, उसको काम में लगा लो। अच्छा तुम एक काम करो, ये गाजर को काटो, मैं ये करता हूं तब तक। अरे तुमने क्या कर दिया, ये ऐसे थोड़ी काटते, मैं सिखाता हूं। किचन में उसको अपना क्या बना दो, साथी, असिस्टेंट, सेवाधारी। तुम ये करो तब तक मैं मिक्सी में ये करता हूं, तुम वो करो उधर। आधा काम उसको देना, आधा खुद करना, और खाते समय देखना ये थोड़ा सा ठीक नहीं बना, आपको तुमको क्या लगता है ठीक बना? बात करते करते, शेयर करते करते खाना। ईट विथ मी इन्वर्टेड कॉमा, क्या महावाक्य है बाबा के, डायरी में नोट करके रखना है इसको, ईट विथ मी, मेरे साथ खाओ। अलग अलग युक्तियां रचनी है भोजन के समय, तो आत्मा शीतल बनेगी, क्योंकि हम जब उसकी याद में भोजन खाएंगे तो वो स्वयं उस भोजन में शक्ति भरेगा, ऐसी पावर उसमें आएगी कि वो पावर से आत्मा के सूक्ष्म गुप्त छिपे हुए विकार भस्म होंगे, जिनके बारे में हम भी नहीं जानते ऐसा अंदर क्या क्या छिपा है पता नहीं। तो बातें करते करते भोजन खाना है, कुछ भी कर सकते हैं, सामान ले सकते हैं, कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर खा सकते हैं। मैं एक एक गिट्टी में जो खा रहा हूं उससे विश्व की हर आत्मा का पेट भर रहा है, ज्ञानी अज्ञानी कोई भी हो, कोई भी भूखा नहीं है। मैं भोजन कर रहा हूं कहां बैठकर, कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर, एक एक कोर, एक एक निवाला, एक एक गिट्टी, एवरी मॉर्सल ऑफ फूड जो मैं खा रहा हूं विश्व में जा रहा है, कितना ऊंचा सम्मान है, कोई भी भूखा नहीं रहेगा। जैसे कृष्ण ने एक दाना खाया और वो दुर्वासा ऋषि और उसकी सारी मंडली सबका पेट भर गया, दिखाया है ना? वैसे हम इतनों सा खाएंगे पर पेट किसका भरेगा, सकल जगत का, ये संकल्प के साथ, सम्मान के साथ। भोजन बनाते समय एक एक चीज जो उसमें डाली जा रही है, एक एक चीज को सकाश देते देते डालना है। माताओं को तेल डाले तो तेल को सकाश, नमक डाले तो नमक को सकाश, एक एक चीज को सकाश देते देते डालना है उसमें। बहुत सारे अभ्यास किए जा सकते हैं। भोजन बनाने का समय तपस्या का समय बन जाए, रसोई बाबा का कमरा बन जाए जहां बैठकर हम तपस्या कर रहे हैं, और भोजन खाना खाना भी तपस्या की ही क्रिया है, अभ्यास है, साधना है, हम साधक हैं। तो पहली विधि योग, दूसरी विधि गहन विचार सागर मंथन, ज्ञान के एक एक लाइन का चिंतन करना है। चिंतन करते करते ही मन शांत हो जाता है, ऊपर ऊपर चिंतन नहीं, थोड़ा गहरा चिंतन, एक एक लाइन का चिंतन, फटाफट मुरली पूरी करनी है ये नहीं। जैसे आज की मुरली अगर हम ले तो जैसे वह वाक्य जैसे उसमें है शुरुआत, बच्चों को पहले पहले एक ही बात समझने की है कि हम सब भाई भाई है, बस रुक जाओ यहीं पे, आगे नहीं बढ़ो, अब यहीं पे रुक जाओ। भाई भाई है क्यों? भाई भाई उत्तर अभी नहीं देना है, अपने आप से बातें करनी है। भाई भाई है क्यों? भाई भाई है कैसे? मैं भाई भाई समझता हूं क्या? मेरे सारे रिश्तों में ये भाव है, या मैं किसी को अपना पति पत्नी बच्चे ये समझता हूं? बाबा कहते तुम सब भाई भाई हो। इतना बड़ा क्रांतिकारी वाक्य है, दूसरा कोई तुम्हारा संबंध ही नहीं है, बस ये ही एक संबंध है यहां पर। ट्रांसफॉर्मेशन, बिलीफ सिस्टम ट्रांसफॉर्म कर रहा है बाबा, परिवर्तन कर रहा है ये जो अवधारणा है, मान्यताएं है। और मान्यता इतनी जल्दी जाती नहीं है, बहुत टाइम लगता है मान्यता को जाने के लिए, क्योंकि बिलीफ सिस्टम हमने जो डाउनलोड करके रखे है, माइंड क्या करता है, डाउनलोड करता है बिलीफ सिस्टम्स को, परंपराओं को, मान्यताओं को, उसको इतना जल्दी नहीं छोड़ पाता है वो इतने गहरे तलों में है वो। और उसमें ये नया कॉन्सेप्ट कि ये सब भाई है और कोई दूसरा संबंधी नहीं है, इतनी बड़ी बात कह दी। तो क्या करना है, गहरा चिंतन करना है, कोई भी वाक्य कहीं से भी उठाकर लेना है और उसका चिंतन करना है। आत्मा में ही सत्व प्रधानता की ताकत थी, वह फिर दिन प्रतिदिन कम होती जाती है। सत्व प्रधानता की ताकत क्या होती है, कैसी होती है? सत्व प्रधान किसे कहा जाएगा, सोचना है। तो गहरा चिंतन करना है, और एक मुरली में ही कितनी पॉइंट्स है चिंतन की, अलग अलग समय पर चिंतन करना है, सुबह थोड़ा चिंतन करना है, एक साथ सारा चिंतन नहीं करना, टुकड़ा टुकड़े किश्ते किश्तों में, सुबह थोड़ा सा करना फिर छोड़ देना, फिर कमरे में आए फिर थोड़ा चिंतन, फिर गए फिर थोड़ा सा टाइम मिला, बीच बीच में चिंतन करना, इंटरवल्स में चिंतन करना, अंतराल जो है उसमें चिंतन करना, और कुछ कुछ प्रश्न बुद्धि में छोड़ के छोड़ देने। और चिंतन से भी ज्यादा और एक दूसरा काम है रिकॉल, जो कल जो मुरली चली थी उसको याद करने की कोशिश करना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिकॉल की प्रोसेस हम बहुत कम करते हैं, जैसे वो मुरली चली थी क्या थी, शीतलता की शक्ति, इसको उससे जोड़ना है, कुछ समय पहले एक वरदान था शीतलता, उसको इससे जोड़ना है, क्योंकि पुराना जो सुना है वो सब भूल चुका है। आकर्षण किसका है, जो नया चलने वाला है। ऐसा कोई है कि आज कल की मुरली जो पढ़े, बहुत कम। हमको क्या चाहिए, आज आज की चाहिए, कोई कहे ये लो कल की मुरली, आज की चाहिए, कल जो हो गया उसको। और एक दूसरी बात, रात को सोते समय, सोते सोते जब बिस्तर पर चले गए, मुरली को याद करते करते सो जाए, क्या थी पॉइंट्स, क्या था वरदान, क्या था स्लोगन, और बीच में ऐसी स्टेज आएगी कि याद ही नहीं आ रहा है, उसको वहीं छोड़ देना। फिर दूसरे दिन लक्ष्य रखना कि जब भी टाइम मिलेगा पहले मैं वो काम करूंगा, क्योंकि वो पेंडिंग है, बुद्धि में गूंज क्या था क्या था क्या था क्या था क्या था, चार प्रकार की आग थी, तीन तो याद आ गई, एक याद नहीं आ रही, तुरंत जाके देखना नहीं, वेट, छोड़ देना बुद्धि को, पेंडिंग रखना उसको, फिर जाके जब वो पढ़ेंगे वो हमेशा के लिए याद रह जाएगा। सारा खेल स्मृति और विस्मृति का है। तो दूसरी विधि चिंतन, जिससे मन क्या हो जाएगा, शांत। तीसरी विधि शीतल बनने की, मौन, एकांत और अंतर्मुखता, साइलेंस, सॉलिट्यूड और इंट्रोवर्शन। ये तीन चीजों के बिना शीतल नहीं बना जा सकता है। मौन का समय निकालना है, एकांत का समय निकालना है, एकांत हर एक को चुराना पड़ेगा, और तीसरा सभी बाह्य बातों से परे अंदर चले जाना है। ये तीन चीजों का आधार लेना है। ऐसी संसार में बहुत सारी संस्थाएं हैं जहां ज्ञान कम सिखाया जाता है, मौन ही ज्यादा सिखाया जाता है, बस चुपचाप बैठे रहो, कुछ नहीं करना। दस दस दिन का शिविर होता है, किताबें, डायरी, पेन, पेंसिल, मोबाइल, सब कुछ 10 दिन के लिए बाहर रख दिया जाता है, और बस मौन में रहो, कुछ बोलना ही नहीं है। उसमें ही कितनी जागृति हो जाती है, उसमें ही एकदम से पता चल जाता है ये जो मैं पकड़ के हूं वो बेकार है, वो व्यर्थ है। रोज उसके बारे में पढ़ रहे तब नहीं पता चलता है। काम महाशत्रु है, काम महाशत्रु, पढ़ा छोड़ा पढ़ा छोड़ा, एकदम प्रतीति हो जाए, एकदम धक्का लग जाए, जाग जाए आत्मा, वो मौन में ही होता है। रोज रोज केवल सुनने से नहीं होगा होश। जैसे एक व्यक्ति अपनी पत्नी और छोटे बच्चे को लेकर किसी, कोई डांस है, कोई कार्यक्रम है सांस्कृतिक, वो देखने जाता है टिकट लेकर। वो मैनेजर कहता है ध्यान रखना ये बच्चा रोना नहीं चाहिए, अगर ये बच्चा रोया तो आपको वापस आना पड़ेगा, बीच से आपको उठा देंगे, क्योंकि बहुत बड़े बड़े कलाकार आ रहे हैं, बच्चा रोना नहीं चाहिए। हाँ, पर अगर ये रोया और अब बाहर आया, आपको आपके पैसे वापस मिल जाएंगे, पर अंदर नहीं जाने देंगे अंदर। तो प्रोग्राम चालू हो जाता है, वो बच्चा बैठता है, उसकी पत्नी बैठती है और वो बेबी। आधा प्रोग्राम होता है, वो पिता अपनी पत्नी को पूछता है प्रोग्राम कैसा है, वो कहती है एकदम बेकार। तो वो कहता है फिर देरी किस बात की, लगाओ चुटकी बेबी को। जब पता चल जाए बेकार है कोई चीज, लगाओ चुटकी और मुक्त हो जाओ उससे, निकलो बाहर। जब पता चल गया ये संबंध कुछ काम का नहीं है, लगाओ चुटकी और निकलो हॉल से बाहर। जब पता चल जाए ये व्यर्थ है, हम कब तक पकड़ के रहेंगे, चुटकी लगाओ उसको, रोएगा वो जोर से, निकलो बाहर युक्ति से, पैसे भी वापस। तो योग को बढ़ाना, विचार सागर मंथन को बढ़ाना, तीसरा मौन एकांत और अंतर्मुखता को बढ़ाना, तो कहीं जाके क्या होगा, शीतलता आएगी, उसके बाद में ड्रामा का राज। दिन रात ड्रामा का चिंतन करते रहना है, ये सारा खेल हो रहा है ड्रामा। ड्रामा के राज के सारे पॉइंट्स, क्या पॉइंट्स है, कैसे पॉइंट्स है, ड्रामा कैसा है, सोचना है उसके बारे में, अपने आप मन शांत होगा। क्योंकि ड्रामा की पॉइंट्स को अगर न सोचे तो प्रश्न ही प्रश्न है फिर, ये इसने ऐसा क्यों किया, उसने वैसा क्यों किया, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसने वैसा क्यों किया, हजार प्रश्न है जिनके कोई उत्तर ही नहीं, बस प्रश्नों से लड़ते रहो दिन रात। तो ड्रामा के ज्ञान, ड्रामा के राज। कुछ दिनों पहले एक मुरली थी, ये राज बड़े पेचीले हैं, कुछ दिनों पहले थी ना, एक तीन चार दिन पहले, ये राज बड़े पेचीले हैं। गुरुमुख गौमुख की बातें चल रही थी, उसमें ये बात कही थी। तो ड्रामा के राज पेचीले अर्थात जटिल, कॉम्प्लिकेटेड, जल्दी समझ में नहीं आते, बुद्धिगम्य नहीं है, परंतु चिंतन लगेगा तो फिर धीरे धीरे समझ में आएंगे। और पांचवी विधि है साक्षी भाव, जो कुछ हो रहा है सब कुछ साक्षी स्थिति में स्थित रहकर देखने का अभ्यास, ज्यादा से ज्यादा साक्षी भाव को बढ़ाना है, तो मन क्या होगा, शांत होगा। तो ये कुछ बातें तो बहुत निकल सकती है, परंतु कुछ शीतल बनने के लिए। अब शीतल किन किन बातों में बना जाए, सबसे पहले तो संकल्प शांत होने लगे, हमारे सारे विचार शांत होने लगे। और शांत विचार कौन से होते हैं, पॉजिटिव, समान वाले विचार बहुत शांत होते हैं। दूसरा बोल शांत होने लगे, जब संकल्प शांत है तो बोल स्वतः ही शांत होंगे, उग्रता नहीं होगी बोल में। जैसे रामायण में दिखाया लक्ष्मण के बोल कैसे और राम जी के बोल कैसे, अंतर है दोनों में। लक्ष्मण को क्या हो जाता है बीच बीच में, गुस्सा आता है, हर जगह पर उसको गुस्सा आया है, पर उसी परिस्थिति में एक दूसरा व्यक्ति भी है राम, वो एकदम शांत है। जल सम वचन बोले रघुनाथा, जल के समान शीतल वचन, निकलते हैं आराम से। शायद अंडरस्टैंडिंग ज्यादा है, परिस्थितियों का हैंडल करने का तरीका राम का अलग है, लक्ष्मण का अलग है। एग्रेशन है लक्ष्मण में, आवेश है, क्रोध है। राम में ना आवेश है ना क्रोध है, शांत है। तो संकल्प शीतल कैसे बनाएंगे? समान से। कैसे बनाएंगे? चिंतन से। कैसे बनाएंगे? ज्ञान की गहराई में जाकर। दूसरा बोल, बोल भी कैसे? शीतल। तीसरा कर्म, कर्म भी कैसे? हड़बड़ी वाले नहीं, जल्दबाजी वाले नहीं, भागम भाग वाले नहीं। ये हुआ वो भागता, वो करता हूं वो करता हूं, ये करता हूं वो करता हूं, ये भी सेवा करनी है वो भी सेवा करनी है, इधर भी जाना है उधर भी जाना है, ये तो शीतल कर्म नहीं हुए। शीतल कर्म अर्थात सौम्यता है जिसमें। और दूसरी बात, जितना मन शांत है उसकी कार्य क्षमता उतनी ज्यादा है। जो मन जितना तेज संकल्प चला रहा है उसकी कार्य क्षमता उतनी कम है। कोई सोचता है मुझे ये भी करना है वो भी करना है, ये भी करता हूं वो भी करता हूं, सब कर भी रहा है, परंतु कहीं ना कहीं गलती हो जाएगी। और दूसरा एकदम शांत है, जो पीसफुल माइंड है वही पावरफुल माइंड है। और कठिन से कठिन परिस्थितियों में अपने आप को शांत रखना। एक विदेशी लेखक ने लिखा है, ये स्ट्रेसर है। स्ट्रेसर अर्थात जो स्ट्रेस दिलाने वाली कंडीशन है या स्टिमुलस। दूसरी तरफ हम हैं, इन दोनों के बीच रिस्पॉन्स है हमारा, जो हम रिस्पॉन्स करते हैं, जिस तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं। ये जो रिस्पॉन्स है, यहां पे हमारे पास एक चॉइस है, किस तरह से रिस्पॉन्ड किया जाए, जल्दबाजी में या फिर धैर्यता से, शांति से। ये दो चॉइस हमारे हाथ में है। एकदम से सामने से कोई व्यक्ति आ जाए कुछ कहते और हमने भी कुछ कह दिया, गया, हमने वो चॉइस ली ही नहीं, वहां चॉइस थी किसको चुनना है, इसको चुनूं या उसको चुनूं। उसने वैसा कहा, हमने भी वैसा कह दिया, गए। सारा खेल इस चॉइस के ऊपर है, रिस्पॉन्स स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच जो चॉइस है उसके ऊपर। ये नहीं कह सकते क्या करूं, मेरे पास टाइम नहीं था, मैंने ऐसे ही बोल दिया, मुंह से निकल गया। मुंह से कुछ भी नहीं निकलता है, स्लिप ऑफ द टंग कुछ होता ही नहीं है। जरूर उसके बारे में सोचा तो होगा पहले कभी, इसलिए तो निकला, ऐसे थोड़ी निकलता है कुछ मुंह से। तो संकल्प शांत, बोल शांत, कर्म शांत शीतल, चौथा संबंध संपर्क शीतल। संबंधों में खिंचातान, कड़वाहट, मिसअंडरस्टैंडिंग्स, हमने बोला कुछ वो समझ कुछ और रहा है, लड़ाई, शीतलता नहीं है उसमें। अगर ऐसी परिस्थिति आ जाए तो एक को शीतल हो जाना चाहिए, पूर्ण शांत, कुछ ना करे, नो कॉन्टेक्ट, शांत हो जाओ। वो शीतलता की किरणें ही सामने वाले को शायद परिवर्तित कर दे। अगला चलन शीतल। चलन शीतल अर्थात भाग भाग ना, बैठेंगे तो जोर से, योग के कमरे में दरवाजा खोलेंगे तो आवाज, जूते निकालेंगे तो नीचे पटकेंगे, थाली भोजन की फेंकेंगे, चम्मच फेंकेंगे, कोई भी चीज को फेंकना नहीं है। क्या करना है? चीजों को रखना है, आवाज ही ना हो, कोई भी चीज का आवाज ना हो, ना जूते निकालना आवाज, ना भोजन कर रहे हो, भोजन करने का भी आवाज करते हैं लोग, सोफे पे बैठने का आवाज धड़ाम, बाजू वाला योग करने वाला हिल जाता है, योग करते समय भी आवाज ना हो, ईयरफोन लगा के ये कमेंट्री सुनते सुनते योग करते हैं, जो पूरे हॉल में आवाज आ रही है बाकियों को भी, फॉल्टी तुम्हारा हेडफोन है, डिस्टर्ब हो रहा है उससे, फोन आया, कमरे से ही ऑन करते हैं फोन, योग का सब योग में बैठे वही पहले तो मोबाइल बज रहा है, फिर उसको ऑन किया जा रहा है और बातें करते करते जा रहे हैं। कितने लोग डिस्टर्ब, या फिर बाहर जाते एकदम वहां दरवाजे के पास ही बातें करते जोर से, सब लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं। कितने संकल्प चल रहे सबके, कमरे के बाहर जाके बातें चालू है, करना है दूर जाओ, और इसको तुरंत इधर ऑफ कर सकते हैं, अगर बजा भी वो बज रहा है तब तक चालू ही है, सब लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं, सब लोग देख रहे हैं, सबके संकल्प चल रहे हैं, आवाज है ये, नहीं आता है तो रखना ही नहीं है, फिर लेके ही नहीं आना है, कमरे में रख के आना है क्लास में या मुरली में, कमरे में रख के आना है फिर एक घंटे के लिए, वो जो भी है, नहीं आता है तो सीखना है, फिर ऐसा कोई नहीं कह सकता कि हमको नहीं आता है, पर उससे अगर डिस्टर्ब हो रहे बाकी तो वो बोझ है फिर। टेक्नोलॉजी अगर यूज करनी है तो उसको सीखनी भी पड़ेगी, फिर कोई ये नहीं कहता हमको नहीं पता, हमको नहीं पता तो यूज नहीं करो, और ये भी एक बहानेबाजी है कि मैं नहीं जानता, अंदर से सीखने का मन ही नहीं है, हर चीज आत्मा सीख सकती है, चाहे कोई कितना भी अनपढ़ हो, हर चीज सीखी जा सकती है, सीखने की ललक चाहिए, सब कुछ सीखा जा सकता है। तो चलन, दौड़ दौड़ना नहीं है, चलना है, भागने की आवश्यकता नहीं है, अनलेस एंड अंटिल बहुत ज्यादा ही इमरजेंसी है, फेंकना चीजों को, जोर से बात करना, जोर से हंसना। अगला, दृष्टि, हमारी दृष्टि कैसी हो, शीतल, शीतल दृष्टि अर्थात पवित्र दृष्टि, शीतल दृष्टि अर्थात जिसमें शरीर नहीं दिखता है, जिसमें आत्मा की तरफ ध्यान है, चमकती हुई मणियों की तरफ ध्यान है, जिसमें पॉजिटिव संकल्प है, जिसमें ये विचार है ये देवकुल की महान आत्माएं हैं, ये संतुष्ट मणियों की सभा है, ये संकल्प हो तो दृष्टि भी पवित्र हो। उसके बाद में हमारी स्मृतियां भी शीतल हो, यादें बहुत शीतल, एग्रेशन वाली यादें ना हो। उसके बाद में कल्पना है, इमेजिनेशन, जो हम विचार करते बैठते, फैंटेसीज जिसको कहते हैं, एकांत में व्यक्ति सोचते बैठता ऐसा होगा तो वैसा होगा तो वैसा, वो सब भी शीतल हो जाए, उसमें भी एक्साइटमेंट और एग्रेशन ना हो। उसके बाद में भावनाएं शीतल, जो निगेटिव भावनाएं होती है वो शीतल नहीं होती है, जो अपवित्र भावनाएं होती है वो शीतल नहीं होती है, प्योर भावनाएं, शुभ भावनाएं, चाहे किसी ने हमारे साथ कुछ भी किया हो, कैसा भी किया हो, और ये भगवान का आदेश है हमारे लिए कि हर एक के लिए शुभ भावना रखो, और विशेष जो अपकारी है उन पर ज्यादा, विशेष जो विघ्न डालने वाले हैं उनको तो ज्यादा शुभ भावनाओं की आवश्यकता है। उसके बाद में स्वप्न भी शीतल होने लगे, हमारे स्वप्न भी कैसे हो, शीतल, वो तो परिणाम है, जो कुछ दिन भर में किया वो रात में दिखेगा, दिन भर में ज्ञान चिंतन करते रहो, एकांत में बैठकर मौन में रहो, रात में भी ज्ञान ही दिखेगा, दिन भर बाबा की याद में रहो तो वो दिखेगा। कल की मुरली में था दिन भर मकान मकान मकान, तो योग में भी मकान ही दिखेगा। उसके बाद है सुनना, हमारा सुनना भी कैसा हो, शीतल। उसके बाद में हमारा खाना, वो भी कैसा हो, शीतल, धीरे धीरे, फटाफट फटाफट नहीं खाना, जल्दी जाना है, जल्दी जाना है, खड़े रह के खाते हैं, कोई कोई खड़े खड़े खाते हैं, जल्दी जल्दी खाते। दो प्रकार के स्वाद होते हैं, एक असली स्वाद एक नकली स्वाद, जो जितना स्पाइसी जितना ज्यादा टेस्टी वो सब है नकली स्वाद, क्योंकि वहां टिकता कहां है, बहुत ज्यादा खाना पड़ता है, खाया और गया, खाया और गया, खाया और गया, नकली स्वाद है वो। असली स्वाद जो होता है वो धीरे धीरे वाला होता है, किसी को कहो ये अंकुरित है, एक कटोरी खाओ, खा लिया, अब खाओ दूसरी कटोरी, नहीं बस हो गया, पेट भर गया, किसी को ये लो पनीर और है क्या, क्योंकि फास्ट जाता है वो, इसको तो टाइम लगता है, चबाना पड़ता है, पर वो असली स्वाद है, वो लाइव है या डेड है, अंतर है दोनों में। तो खाना भी कैसा हो योगयुक्त, खाना भी कैसा हो मौन में, खाना भी कैसा हो बाबा के साथ, खाना भी कैसे हो धन्यवाद के साथ, खाना भी कैसा हो कम। योगी अल्पाहारी होता है, और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे पता चलेगा कि कम से कम भोजन में अधिक से अधिक स्वस्थ रहा जा सकता है। लोग जो उपवास करते हैं उनको भूख नहीं लगती, भूख तो तब लगती है जब भोजन करना चालू करते हैं। पैराडॉक्स है, उल्टा है हिसाब। तो खाना, उसके बाद में स्पर्श करना भी शीतल हो। हमारा स्पर्श कैसा हो, शीतल हो, हमारे स्पर्श में वासना ना हो, विकार ना हो, पवित्रता हो, प्यूरिटी से भरा हुआ स्पर्श। स्पर्श भी पहचान में आता है, इच्छा वाला स्पर्श है, वासना वाला स्पर्श है, विकार वाला स्पर्श है, या प्रेममय स्पर्श है, कैसा स्पर्श है, इरिटेट वाला इरिटेट वाले भी होते हैं। जितना हो सके स्पर्श करना ही नहीं है किसी, उस स्पर्श में गड़बड़ है। जितना हो सके, मना नहीं कर रहे, जितना हो सके, चाहे कोई भी हो, फिर कोई भी, जितना हो सके, कोई भी हो, कोई भी। हमारे यहां जैन साध्वी आती है ओपीडी में, क्या तकलीफ है, तकलीफ बताई, ओपीडी पेपर लो, वो कहती है नीचे रखो, हाथ से नहीं लेती है, भले हम इधर से पकड़े वो उधर से पकड़े, वैसे भी नहीं, नीचे रख दो फिर लेगी। वहां बैठती नहीं है, अगर वहां कोई भाई बैठा है आधे घंटे पहले, उनके बहुत सारे नियम है। रामकृष्ण परमहंस के पास कोई गृहस्थी आ जाता था विकारी, वो जहां बैठता था जाने के बाद फावड़ा लेके वो जमीन को खोदते थे, कहते ये हटाओ, इस वाइब्रेशंस खराब कर दिए उसने। तो कितनी बातें हो गई, 16, संकल्प, बोल, कर्म, संबंध, संपर्क, चलन, उसके बाद में दृष्टि, उसके बाद में कल्पनाएं, भावनाएं, उसके बाद में स्वप्न, स्मृति, उसके बाद में खाना, सुनना, स्पर्श करना, उसके बाद में अगला संस्कार। संस्कार भी क्या होते जाए, शीतल होते जाए, संस्कारों में जो एग्रेशन है वो कम होता जाए, उस पर काम करना है। हमारे कौन सा ऐसा संस्कार है, किसी का हड़बड़ी का संस्कार है, किसी का ज्यादा बोलने का संस्कार है, किसी को इंटरप्ट करने का संस्कार है, किसी को संस्कार है दूसरों की बातों में दखलंदाजी करने का, दूसरों के जीवन में क्या चालू है वो देखने का, गॉसिप्स करने का, झरमोई झगमोई। अगला है बुद्धि शीतल। बुद्धि जब शीतल होगी उस वो जो कुछ निर्णय देगी सब राइट होंगे, अभी बुद्धि शीतल नहीं है। उसके बाद में 16वां, कर्मेंद्रिया शीतल। सारी कर्मेंद्रिया क्या हो जाए, शीतल। योगी अर्थात ही शीतल काया, योगी अर्थात कि जिसके अंग अंग शीतल हो गए, यही योगी की परिभाषा है। हाथों में उत्तेजना नहीं रही, आंखों में उत्तेजना नहीं रही, सारी कर्मेंद्रिया शांत हो गई, शरीर ही शांत हो गया है। विदेश में एक लेखक है, उसने लिखा है इंस्टेंट मेथड क्या है, अगर क्रोध आ रहा है तो उसने उदाहरण दिया है, जैसे छोटे बच्चे हैं ना, कौन सा गेम खेलते हैं, स्टैचू, क्या करते हैं, स्टैचू, वैसे कर देना है। क्रोध आ रहा है, अभी कुछ बोलने ही वाले, बस सामने वाला ने हरकत ही ऐसी की है उत्पटांग, कि हम कुछ बोलने वाले, क्या कर देना है, खुद को स्टैचू, स्थूल करना, उसने कहा कि ऐसा करो, करो ऐसा, बस स्टैचू हो जाओ, एक भी ना उंगली हिले ना कुछ हिले, बस ऐसे हो जाओ स्टैचू, जब वो चला जाए हाँ तब छोड़ना फिर ऐसे कर देना अपने आप को, स्टॉप, स्थूल में करना, तो वो काम करेगा। बुद्धि को, माइंड को थोड़ी समझ में आता है ये रियल आदेश है या झूठा आदेश है, ये उसको सबकॉन्शियस को समझ में नहीं आता है, वो तो बस मानता है, नौकर है वो सबकॉन्शियस माइंड, जो उसको कहा होगा वो करेगा। जैसे रोज किसी को 1 बजे भोजन करने की आदत है, घड़ी 1 बजे दिख गया, भूख लगती है, 11 बजे 1 बजा दो, 11 बजे देखेगा 1 बज गया, चलो भोजन के लिए। ये माइंड है, उसको तो जैसा सेट कर दिया अलार्म, बस वैसा अपने आप काम करता है वो। जैसे हम रोज 3:30 बजे उठते हैं, ठीक है, 1:30 बजे कर दो, 3:30 बजे 1:30 पर दिखा दो 3:30, उठेंगे और एकदम फ्रेश, एकदम फ्रेश। ऐसा भी नहीं कि नींद कम हो गई, बराबर 3:30 बज गया, बजा 1:30 है, और उसको उल्टा कर दो, बजे 3:30 है पर हमको दिखाए 1:30, अरे अभी हाँ मेरी नींद पूरी नहीं होगी, मुझे सोना है। तो इन सभी बातों में क्या करना है, अपने आप को शीतल, वैसे एक एक पर काम करने की जरूरत नहीं है, एक ही संकल्प में स्थित मैं शीतल योगी हूं, शीतलता की किरणों के नीचे हूं, ये सब अपने आप शीतल होते जाएगा। बोल, कर्म, चलन, संबंध, बुद्धि, संस्कार, भावनाएं, दृष्टि, सब 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 अपने आप शीतल। तो हमें क्या बनना है, शीतल योगी, शीतला देवी। जहां कहीं आग लगी हो पहुंच जाना अपना कलश लेके, कोई बीमार हो तो शीते डाल के आ जाना उसके पास शीतल जल के। तो ऐसे हमको शीतल बनना है और संसार में शीतलता फैलानी है, तप रहा है संसार, अमृत हमको मिला है, वो अमृत सबको पिलाना है। तव कथा अमृतम तप्त जीवनम कवि प्रेरितम कल्म शापहम श्रवण मंगलम श्रीमदादतम भुवि गृणन्ति ते भूरिता जना। ओम शांति।
Thank you.
सुंदर, काजल सा काला ये अंतर,
काजल सा काला ये अंतर,
नहीं कहीं कुछ मुझ में सुंदर, काजल सा काला ये अंतर, प्राणों के गहरे गहवर में ममता मैं